खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकालें खुदावंद के कलाम में से। मरकुस की इंजील उसका 11वां बाब। मरकुस की इंजील उसका 11वां बाब। आप सबको याद है कि हम नए अहदनामा में से इफ़िसियों के नाम पालूस रसूल का ख़त आयत बा आयत सीख रहे हैं, और वहाँ पर खुदा का बंदा पालूस ईमानदारों को सिखाते हुए कहता है, पस अजीज़ फरजंदों की तरह खुदा की इमानत बनो। मरकस की इंजील उसका 11वां बाप उसकी 25वीं आयत से जी। और हम वहां से सीख रहे हैं कि मुकद्दसों को क्या मुनासिब है, ईमानदारों को क्या मुनासिब है कि इस जमीन पर करें। कल हमने दो आदमियों की मिसाल देखी थी, खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील दी लूका की इंजील उसके 18वें बाप में, महसूल लेने वाला और फिर एक फरीसी। हमने कल सीखा था कि ईमानदारों को शुक्रगुजारी करना मुनासिब है। हमें क्या मुनासिब है? शुक्रगुजारी करना मुनासिब है। और वहां पर हमने दो रवैये देखे थे, एक रवैया जो तकब्बर से, एक रवैया जो क्या कह सकते हैं कि हसद से और अपनी मनमानी से भरा हुआ था। उस फरीसी का रवैया क्या था? उसने अपने आप से ये दुआ करना शुरू की कि मैं रोजा रखता हूं, मैं नेक काम करता हूं, मैं जालम नहीं, मैं इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूं, मैं दायकी देता हूं और वगैरह वगैरह करता हूं। और वो किससे दुआ कर रहा था? अपने आप से। वहां पर लिखा है कि उसने अपने जी में ये कहना शुरू किया। और महसूल लेने वाले ने क्या किया? उसने कहा, ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। उसने इतना भी नहीं चाहा कि आसमान की तरफ आंखें उठाकर देखे, बल्कि बड़ी हलीमी से, बड़े एहतराम से वो कहता है कि मैं गुनाहगार हूं, इस लायक ही नहीं कि मैं किसी बात का इकरार कर सकूं कि मैंने कुछ किया है। मुझे अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो तेरे रहम की जरूरत है। सो ये मुकद्दसों को क्या है? मुनासिब है कि शुक्रगुजारी किस तरह की जाए? हलीमी के साथ। ऐसी शुक्रगुजारियां खुदा पसंद करता है। इसलिए मुकद्दसों को क्या मुनासिब है? आए देखिए, मरकस की इंजील उसका 11वां बाप उसकी 25वीं आयत से पढ़ेंगे। और यहां पर लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, और अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर माफ करे। और 26वीं आयत में लिखा है, अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर भी माफ ना करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब की रहनुमाई हो। आए हम खुदा के हुजूर झुके। खुदा बाप, तू ही माफ करने वाला, तू ही रहम करने वाला, तू ही रहनुमाई करने वाला खुदा है। आज अपने कलाम के वसीला से हम सबको सिखा कि हम सबको जो हम मुकद्दसीन हैं हमें क्या मुनासिब है। खुदावंद आज मेरे लबों का रखवाला बन, ताकि हर एक सुखन जो तेरा पाक सुखन है इन लबों से निकले। मेरे मुंह पर रखवाला बिठा, मेरे मुंह का निगाहबान बन खुदावंद, ताकि तेरे लोगों तक तेरी सच्चाई पहुंचे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मुकद्दसों को क्या मुनासिब है? मुकद्दसों से मुराद यानी के पाक किए हुए, अलहदा किए हुए, मुकद्दस ठहराए हुए लोग। कोई किस तरह मुकद्दस बनता है? जो कोई खुदावंद यीशु पर ईमान लाएगा वो रासबाज ठहराया जाएगा। जो कोई खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है वो अलहदा किया जाता है। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा होता है उसे क्या कहा जाता है? मुकद्दस। उसे मुकद्दस लोगों का फिरका कहा जाता है। और हम कह सकते हैं कि इब्तदाई तौर में बहुत दफा कहा जाता कि ये फलां मिशन थी, ये मिशन थी, वो मिशन थी, कुछ भी नहीं था बामुताबिक बाइबल मुकद्दस। इब्तदा में जब 12 शागिर्दों ने यीशु मसीह को कबूल किया, यीशु मसीह के पीछे हो लिए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो पहली दफा लोगों ने जब यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह खुदा का बेटा जमीन पर आया, मसलूब किया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और लोगों पर जाहर होता है। तो शागिर्दों के मुंह से जब उन्होंने ये पैगाम सुना और कहा कि जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, तो बाइबल मुकद्दस ईमान की किताब बयान करती है। तो पहली दफा लोगों ने क्या कहा? जो यीशु पर ईमान लाते थे वो क्या कहलाए? मसीही कहलाए। हम कौन हैं? मसीही। मसीहत को हम किसी फिरके में बंद नहीं कर सकते। मसीहियों को मसीही इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो यीशु मसीह के मानने वाले हैं। आपको मसीही इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि आप ग्रेस बाइबल चर्च में आते हैं। किसी और को मसीही नहीं कहा जाता क्योंकि वो एआरपी चर्च में जाता है। किसी को मसीही ये नहीं कहा जाता कि वो सैलवेशन आर्मी चर्च में जाता। नहीं, मसीही कहा गया है। किस लिए? क्योंकि हम मसीह पर ईमान लाते हैं। इस बात को अपने जहन में रखें कि कभी भी ईमानदार होते हुए अपने आप को नामों के डब्बे में बंद ना करें और ना ही किसी को करने दें। हम कौन हैं? मसीही। बाइबल मुकद्दस में कहीं भी नाम नहीं मिलता कि कोई और नाम हमें दिया गया है। हम कौन हैं? मसीही। और साथ में कहा गया है मुकद्दसों का फिरका। हम मुकद्दस लोग हैं। क्यों मुकद्दस लोग हैं? क्योंकि हमारी चट्टान कौन है? यीशु मसीह। मुकद्दसों को क्या मुनासिब है? आज मैं ये कह सकता हूं कि आप अपना नाम लगा सकते हैं कि मुझे क्या मुनासिब है कि मैं किस तरह जिंदगी गुजारूं, किस तरह जिंदगी गुजारूं। और हमारे पास ये एक रवैया है। खुदावंद यीशु मसीह जब तालीम दे रहे थे अपने शिगिर्दों को, पहाड़ पर खड़े हैं तो खुदावंद यीशु मसीह उनको ये सच सिखाते हैं। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो। ये मुकद्दसों को मुनासिब है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी शुक्रगुजारी आसमान पर नहीं पहुंचेगी, हमारी दुआ आसमान पर नहीं पहुंचेगी। और कह सकता हूं पहुंचेगी, लेकिन खुदा उसका जवाब नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमें माफी का क्या है? रवैया नहीं है। और ये बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं कि जाल है जो इब्लीस हमारे लिए बिछाता है कि हम तमाम बातों में वाह वाह एक दूसरे को भला चंगा कहते हैं, लेकिन जब माफी का वक्त आता है तो हम एक दूसरे को माफ नहीं करते। दुआए रबानी हम कितनी दफा पढ़ते हैं? हमारे सोचने के मुताबिक जो एक रीत बन गई है दुआए रबानी, सिर्फ क्या बन गई है? दुआ का खत्म। ऐसा नहीं है। दुआए रबानी में इतना कुछ है कि हम सीखें, ना कि सिर्फ उसे जल्दी जल्दी से पढ़कर खत्म करें। दरअसल ये दुआए रबानी के ही अल्फाज हैं जो खुदा यीशु मसीह ने अपने लबों से कहे। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते और अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ करेगा। हम ईमानदारों को ये मुनासिब है कि हम माफ करें। हम ईमानदारों को मुनासिब है कि एक दूसरे पर रहम करें। हम ईमानदारों को मुनासिब है कि यीशु मसीह के लिए एक दूसरे पर तरस करें। हम ईमानदारों को मुनासिब है कि शुक्रगुजारी की कुर्बानियां सही तौर पर उसके हुजूर गुजरा रही। तो मैं आज यही चाहूंगा कि पाक कलाम की आईने की रहनुमाई में, खुदा का कलाम आईना है, अपने आप को देखें कि आज मैं किस रवैये में हूं। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या लिखा है, अगर तुम किसी के को माफ करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर माफ करेगा। दुआरबाने में हम यही पढ़ते हैं, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हम पढ़ते हैं लेकिन बहुत दफा उसे अनदेखा कर देते हैं। सो इसलिए बेशक हमने ये दुआ का आखिर बना लिया है कि जी दुआ रबानी करेंगे तो वादत खत्म हो जाएगी। दरअसल दुआ रबानी ऐसा खजाना, ऐसा भेद है जिसमें से हम एक एक लफ्ज पर सीख सकते हैं। खुदा यीशु मसीह ने बाप को मुतारफ कराया और कहा कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। सो इसलिए हम कसों को मुनासिब है मोहब्बत करना एक दूसरे से, मसीह वाली मोहब्बत, फिल्मों वाली मोहब्बत नहीं, माफ करना यानी कि यीशु मसीह में एक दूसरे को माफ करना जिस तरह हमारे कसूर माफ किए गए हैं। मेरे साथ देखें इफिसियों 4 बाब, इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका 4 बाब उसकी 32वीं आयत, जो कोई भी निकाल ले वो बुलंद आवाज से पढ़े खड़ा होकर, खड़ी होकर। इफिसियों 4 बाब उसकी 32वीं आयत,
और एक दूसरे से मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। खुदा के पाकलाम में पढ़े और
आमीन। और एक दूसरे पर मेहरबान हो, एक दूसरे पर मेहरबान हो और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। पुराने अहदनामा के मुताबिक जब काहन खुदा की हजूरी में जाता था उस पाक तरीन मकाम में, सबसे पहले वो अपने आप को पाक साफ करता था। एक बर्रा उसके लिए कुर्बान किया जाता था उसका खुद का कफारा दे के कि उसमें कोई गुनाह तो नहीं है, फिर वो खुदा के हजूर जाकर अपनी कौम के गुनाहों के लिए कुर्बानी देता था। अगर वो गुनाहगार होता तो उसी वक्त उसकी जान निकाल ली जाती थी और उसकी हजूरी जो है खुदा के हजूर बरकत का बायस उसके लिए नहीं बनती थी, और साथ में उसके घंटी बांधी जाती थी कि चेक करते थे कि जी काहिन साहब जिंदा है या नहीं, कोई गुनाह तो उसकी जिंदगी में नहीं था। तो पुराने अहदनामा के अक्स में और नए अहदनामा के अक्स में हम यही देखते हैं कि अगर हम हमारी जिंदगी में कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई गिला किसी के साथ अगर हमने माफ नहीं किया तो हमारी दुआ, हम मरेंगे नहीं लेकिन रूहानी तौर पर हमारी दुआ खुदा के हजूर पूरी नहीं होगी, सुनी जाएगी। खुदा बहरा नहीं है, खुदा सुनता है लेकिन वो जवाब नहीं देगा। जैसे बहुत दफा माँ बाप होते हुए आप अपने बच्चों को कुछ कहने के लिए करते हैं लेकिन जब वो नहीं करते तो उसी वक्त अगर वो आपको कुछ कहने के लिए करे तो आप वक्ती तौर पर उनको क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, सुन रहे होते हैं लेकिन नजरअंदाज किया जाता है। खुदा भी ऐसा ही करता है क्योंकि उस दुआ में उस वक्त माफी का दर्श नहीं है, क्योंकि खुदा माफ करने वाला खुदा है। तो आज इस बात पर खत्म करना चाहता हूं कि हम मुकासों को क्या मुनासिब है, हम माफ किए गए हैं, हमें माफ करने की जरूरत है ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी माफ करने की जरूरत है। इस बात का इंतजार ना करें कि दूसरा मुझसे आकर माफी मांगे, क्योंकि यह भी एक फंदा है जो इबलीस लगाता है। आपने माफ करना ये नहीं कहा गया कि तुम माफ तब करना जब तुमको कोई आकर कहे कि जी मेरे पांव पकड़ो, हमें माफ करना है बाकी सब काम खुदा के हाथ में देना है। सो मुकस्सों को ये मुनासब है, मुकस्सों को माफ करना मुनासब है, परस्तिश करना मुनासब है, हम्द करना मुनासब है, एक दूसरे के लिए बरकत चाहना मुनासब है, एक दूसरे के लिए दुआ करना मुनासब है, एक दूसरे पर रहम करना मुनासब है, एक दूसरे से नरम मजाजी हलीमी से पेश आना मुनासब है। और मुकस्सों को क्या नहीं मुनासब, नामुनासब क्या है? झूठ नहीं बोलना, बदी नहीं करनी, बदगोही नहीं करनी, ऐब जोई नहीं करनी, एक दूसरे के लिए भला बुरा भला नहीं सोचना। और इसीलिए पालूस रसूल कहता है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानत बनो, खुदा के पैरोकार। इसलिए हमें माफ करना है पूरे तौर पर। बहुत दफा हम माफ करते हैं, दिन में 40 गलतियां हैं, हम 45, 40 की बजाय 35 माफ करते हैं और 5 कहते हैं कि ये बड़ी हैं, इसमें मैं बाद में तुझसे बात करूंगा करूंगी। ऐसा नहीं करना। माफी का मतलब मुकम्मल तौर पर भूल जाना। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में आया है कि अब से मैं तुम्हारे गुनाहों को फिर याद ना करूंगा। क्या कभी खुदा ने कहा है आके कि कल आपने जी ये गुनाह किया था इसलिए हिसाब लो? तो खुदा हमें माफ करता है, हमें भी मुकम्मल तौर पर माफ करने की जरूरत है। बहुत दफा खामन बीवी में ये बात चलती है, पर ये चाह दे विच लून पाया सी तेनू माफी, सालन दे विच घ्यो ज्यादा पाया सी तेनू माफी, लेकिन बिस्तरा नहीं करके दिता ओदी नहीं माफी मिलनी। सो माफी का मतलब है मुकम्मल माफी। ये नहीं कि दो गुना नीचे रख लें और एक गुना माफ करके कहें कि जी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, यीशु मसीह का हुक्म पूरा कर रहा हूं। जब भी मेरा और कैरी का लड़ाई झगड़ा होता है तो हम एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर माफ करते हैं। ये नहीं कि कैरी तेरी 5 गलतियां तुझे माफ की गई हैं और एक में आकर हिसाब करूंगा। सो जब कभी हम खुदा के हजूर खड़े हों, खड़े होने के लफ्ज में कुर्बानी चढ़ाने के लिए, दुआ करने के लिए, शुक्रगुजारी करने के लिए, मिन्नत करने के लिए, खुदा की आवाज को सुनने के लिए, एक लफ्ज में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जब कभी तुम खड़े दुआ करते हो, तो अगर किसी के तुम अगर तुमको किसी से कोई शिकायत है तो उसे माफ करो। मुकम्मल तौर पर आए हम खुदा के हुजूर झुके। कादर मुतलिक खुदा हम सबको यीशु मसीह में खुदावंद हिकमत और दनाई बख्श, ताकि हम एक दूसरे को माफ करें जैसे तूने हमारे तमाम कसूर और गुनाह माफ किए हैं।